From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
शहर में टेंपल स्क्वायर सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 184th वार्षिक जनरल सम्मेलन है। वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों के साथ और इस अधिवेशन के लिए संगीत गायन मंडली ओरम यूटा संस्थान द्वारा प्रस्तुत किया गया है। बॉनवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जन सेवा के लिए गया है। कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है।
President Henry B. Eyring,
अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग गिरजाघर के प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार इस अधिवेशन का संचालन करेंगे। भाइयों और बहनों, हम आपका अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह के गिरजाघर के जनरल सम्मेलन के 184th अर्थवार्षिक दूसरे अधिवेशन में स्वागत करते हैं। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन, जो इस सम्मेलन का के संचालन करता है, ने मुझे इसे अधिवेशन का संचालन करने को कहा है। हम आप सभी का संसार भर में गर्मजोशी से, जो यहाँ पर यह आचरण में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और जो संसार भर में विभिन्न स्टेक केंद्रों में सैटेलाइट ट्रांसमिशन द्वारा जहाँ पर सम्मेलन पहुँचाया जा रहा है भाग ले रहे हैं, का अभिनंदन करते हैं। हम जनरल अधिकारियों और जनरल सहकारी अध्यक्षता का जो उपस्थित हैं का कृतज्ञता से अभिनंदन करते हैं। इस अधिवेशन के लिए संगीत की प्रस्तुति इंस्टीट्यूट गायक मंडली ओरम यूटा द्वारा पेश की जाएगी। बॉनी गुडलिफ के साथ लिंडा मार्गेट ऑर्गन पर राइन एगेट के निर्देशन के अंतर्गत गायक मंडली इस सभा का आरंभ ग्लोरी टू गॉड ऑन हाई गीत गाकर करेगी। प्रारंभिक प्रार्थना एल्डर पाल वी जॉनसन 70 के पहले परिषद के द्वारा दी जाएगी, जिसके पश्चात गायक मंडली आई लिव्ड इन हेवन कहेगी।
Father in heaven, we are grateful.
के पिता, हम आपका धन्यवाद कसूर करते हैं और कई स्थानों पर एकत्रित दुनिया में एकत्रित हुए हैं और सच्चाई को सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यहाँ होने के लिए। अपने जीवित पर भविष्य तक से अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के साथ हम उससे प्यार करते हैं। हम आपका प्रार्थना करते हैं कि हम उससे समर्थन करते रहें। हम आभारी हैं और तैयारी के लिए जो वक्ता यहाँ पे दिए गए हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि वो मनन कर रहे हैं और तैयारी ताकि एक अच्छे फल ला के अपने संदेश होते हैं, ताकि हम आत्मिया के द्वारा टच के जब उनके शब्दों को सुनते हैं हम आत्मा द्वारा टच किए जाएं। पिता, हम अपने उद्धारकर्ता के लिए हमारी चीजों सीख रहे धन्यवाद देते हैं और उसके प्रायश्चित के लिए हमें मदद करें उसका अनुसरण करने के में एक अच्छे शिष्य बने मसीह के। हम इसके लिए यीशु मसीह के नाम में उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।
President Dieter F. Uchtdorf.
और अब अध्यक्ष डीटर एफ उकडोर्फ जनरल कार्यकाल और गिरजा के क्षेत्रीय 70 के लिए समर्थन करने के वोट प्रस्तुत करेंगे। समर्थन के समापन पर केविन आर जर्गेंसन प्रबंध निदेशक गिरजे का परीक्षण विभाग का अर्थवार्षिक विवरण पढ़ेंगे। उनके बाद ब्रुक पी हेल्स प्रथम अध्यक्षता के सचिव गिरजे के साल 2013 सांख्य विवरण प्रस्तुत करेंगे।
यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉनसन का भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटकर्ता और अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के अध्यक्ष के रूप में, हेनरी बेनियन आयरिंग का प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार के रूप में और डीटर फ्रेडरिक उजडॉर्फ का प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करें, जो पक्ष में है इसे प्रकट कर सकते हैं, जो विरोध करते हैं यदि कोई हो उसे प्रकट कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम बॉयड केनेथ पैकर का 12 प्रेरितों की परिषद के अध्यक्ष के रूप में और बॉयड के पैकर एल टॉम पेरी, रसल एम नेल्सन, डालिन एच ओक्स, एम रसल बैलर्ड, रिचर्ड जी स्कॉट, रॉबर्ट डी हेल्स, जेफरी आर हॉलैंड, डेविड ए बेडनार, क्वेंटिन एल कुक, डी टॉड क्रिस्टोफर्सन और नील एल एंडरसन का परिषद के सदस्यों के रूप में समर्थन करें। कोई विरोध हो तो व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम प्रथम अध्यक्षता में सलाहकारों और 12 प्रेरितों का भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकटकर्ता के रूप में समर्थन करें। वे सब जो पक्ष में हैं, कृपया इसे प्रकट करें। विरोध यदि कोई है तो इसे प्रकट करें। इस समहार्दिक प्रशंसा के साथ एल्डर टेड आर कैलिस्टर को जनरल अधिकारी और 70 की परिषद के अध्यक्षता के सदस्य के रूप में सेवा मुक्त करते हैं। वे जो हमारे साथ मिलकर इनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, कृपया इसे व्यक्त करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम एल्डर लिन जी रॉबिन्सन का 70 की परिषद की अध्यक्षता के सदस्य के रूप में समर्थन करें। सब जो पक्ष में हैं, कृपया इसे प्रकट करें। जो विरोध करते हैं यदि कोई हो। यह प्रस्ताव किया जाता है कि निम्नलिखित को क्षेत्रीय 70 के रूप में 1 मई 2014 से प्रभावित सेवा मुक्त करें। पेड्रो ई अबुलारोक, जूलियो है एंगुलो, विक्टर ए एस्कोनिवेता, डुक सोबेरी, हुआन सी बारोस, कॉलिन एच ब्रिगनेल, डेनिस सी ब्रिमहॉल, थॉमस एम चेरिंगटन, किम बी क्लार्क, वेन आर ड्यूसनप, रोडोल्फो सी फ्रांको, जी गोरियमो गार्सिया, जूलियो सी गोंडाजेस, मोरो हुनोद दे मारिया, लेरी एस कैचर, डेविड ई लेसियोर, पाउलो सी लोरेरो, स्टीवन जे लॉन्ड, इब्राहम मार्टिनेस, हुगो ई मार्टिनेस, सर एन मिकुलियन, क्रिस्टोफर बी मंडे, हिरोफुमी नाकासुका, चिकाओ ओशी, एलेहान्ड्रो एस पतानिया, रिनाटो एम फेल्टा, अनाटोली के रेसेटलिकोफ, जोनाथन सी रॉबर्ट्स, जे क्रेग रोवे, रॉबर्ट बी स्मिथ, वॉरेन जी टेट, हेजबॉन ओ उसी, टानियला बी वेकोलो, रेडी एम एम और ची होंग सैम वांग, जो इनकी शानदार सेवा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है हम हार्दिक प्रशंसा के साथ रसल टी ऑस्गुथर्प, डेविड एम मैकॉन्की और मैथ्यू ओ रिचर्डसन भाइयों को रविवार विद्यालय महाअध्यक्षता के रूप में सेवा मुक्त करें। इसी प्रकार हम रविवार विद्यालय की महासभा के सभी सदस्यों को भी सेवा मुक्त करते हैं। वे सब जो इन भाइयों और बहनों की शानदार सेवा और श्रद्धा के लिए आभार व्यक्त करने में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, कृपया इसे प्रकट करें। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम 70 की प्रथम परिषद के नए सदस्यों ची होंग सैम वांग एंड योरक क्लिकनगार्ड और 70 की द्वितीय परिषद के नए सदस्यों लैरी एस कैचर एंड उगो ही मार्टिनेज और 70 की को समर्थन करें। कोई विरोध में है इसे प्रकट कर सकते हैं। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम निम्नलिखित का नए क्षेत्रीय सत्रों के रूप में समर्थन करें। हुलियो सीजर अकोस्टा, ब्लेक आर ऑल्डर, एलेन सी अलार, थाईची अवा, कार्लोस एफ एरिडोंडो, व्लादिमिर एन अस्ताशोफ, जॉर्ज सी बेसेरा, माइकल एच बॉर्न, रोमुलो कैप्रेरा, होसे क्लाउडियो एफ कैंपोस, निकोलस कास्तानियेदा, वॉल्टर चेटोरा, फोक हुएन, जेनो चो, जे केविन एंस, के मार्क फॉर्स्ट, मॉरिसियो जी गुंजागा, लेनर्ड ग्रियर, होसे इसगेरे, माइकल आर जेंसन, अडोल्फ हुआन योहानसन, टे गोल्ड योंग, विसित खनाहकम, जर्की आ खोवोलोस, जेरियो क्रेसनोसेल्की, मिलान एफ कुंस, ब्रायन आर लार्सन, जेराल्डो लीमा, डब्ल्यू जेन पेरे लोनो, तसारा मकासी, कुंबुलानी मेटलेसी, डेल एच मंक, एडवार्डो नोरम्बोइना, युथाका ओंदा, रेमोंडो पेसेको डी पेनियो, मार्को एंथोनियो राइस, स्टीवन के रैंडल, आर स्कॉट रूनिया, एलेक्से वी समाइकेन, एडविन ए सेक्सटन, राउल एच स्पिटल, कार्लोस वॉल्टर ट्रेविनो और हुआन ए ओरा। वे सब जो पक्ष में हैं कृपया इसे प्रकट करें। जो विरोध करते हैं यदि कोई हो। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम टेड आर कैलिस्टर को रविवार विद्यालय के अध्यक्ष के रूप में, जॉन एस टेनर और डेविन को प्रथम सलाहकार के रूप में और डेविन जी ड्यूरेंट को द्वितीय सलाहकार के रूप में समर्थन करें। वे जो पक्ष में हैं इसे प्रकट कर सकते हैं। कोई विरोध में है तो इसे प्रकट करें। हम जानते हैं कि भाई ब्रदर टैनर एंड ड्यूरेंट दोनों वर्तमान में मिशन अध्यक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं और इसीलिए सम्मेलन केंद्र में उपस्थित नहीं है। वे रविवार विद्यालय महाअध्यक्षता में अपनी आधिकारिक सेवा शुरुआत जुलाई 2014 में मिशन अध्यक्ष के रूप में सेवा मुक्त होने के बाद करेंगे। यह प्रस्ताव किया जाता है कि हम अन्य महापदाधिकारियों, क्षेत्रीय सतत्रों और महासहायक अध्यक्षताओं का समर्थन करें जो कि वर्तमान में गठित हैं। जो पक्ष में है कृपया इसे प्रकट करें। कोई विरोध में है इसे प्रकट कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, आपके समर्थन के लिए, आपके निरंतर विश्वास के लिए और हमारे लिए आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हम नए नियुक्त महाधिकारियों को आगे आने और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का निमंत्रण देते हैं।
It's a long walk.
बहुत लंबी वॉक है ये।
As announced by the church,
जैसा कि घोषणा की गई थी, अब भाई हेजर्सन लेखा परीक्षण विवरण पढ़ेंगे, उसके बाद भाई हेल्स सांख्यिकी विवरण पढ़ेंगे।
प्रथम अध्यक्षता के अंतिम दिनों के संतों का यीशु मसीह गिरजाघर। प्रिय भाइयों, जैसा कि निर्देशित किया गया है कि प्रकटीकरण द्वारा सिद्धांत के अनुसंधान में 120 में परिषद का दसवां भाग के प्रधान में, जिसमें कि प्रथम आवश्यकता 12 परिषदों की परिषद और अध्यक्षता धर्मराज गिरजे के धन को के खर्च की अनुमति देते हैं। गिरजा संस्थाओं को धन समस्या से स्वीकृत बजट नीति और प्रक्रिया से देता है। गिरजे का परीक्षण विभाग जिसमें प्रमाणित परमेश्वर है और जो कि गिरजे के अन्य विभागों के अलग है, इसकी जिम्मेदारी परीक्षण करना इस उद्देश्य की पर्याप्तता, भरोसा उपलब्ध को हो दान प्राप्ति के संबंध में किए गए खर्चे का और गिरजे की सम्मति की रक्षा करना है। किए गए परीक्षण के आधार गिरजे के परीक्षण विभाग के अनुसार सब वस्तुओं के सम्मान में दान प्राप्ति, किए गए खर्च का और गिरजे की समाप्ति वर्ष 2013 का अभिलेख और प्रशासन स्वीकृति बजट नीति और प्रक्रिया से किया गया है।
Avoiding debt and saving against the time of need. Respectfully submitted, Church Auditing
Department. सम्मानपूर्वक जमा की गिरजे का परीक्षण विभागकरण केविन आर जर्कसन, प्रबंधक निर्देशक।
For the information of the members, गिरजे
सदस्यों की सूचना के लिए प्रथम अध्यक्षता ने 31 दिसंबर 2013 तक गिरजे के विकास और प्रगति के संबंध में निम्नलिखित संख्या की विवरण जारी किया है। कुछ स्टेटकों की संख्या 3050, मिशन 405, जिले 571 और वार्ड शाखाएं 29,245 थी। गिरजे की कुल संख्या 15,82,028 थी। 2013 के दौरान 1,15,486 नए बच्चे अभिलेख में शामिल किए गए और 2013 के दौरान 2,82,945 बपतिस्मे दिए गए थे। जो पक्ष में है कृपया से प्रकट करें।
One temple was dedicated during 2013, the Tegucigalpa Honduras Temple. The number of temples in operation at the end of the year was 141.
We will now be pleased to hear. अब हम एल्डर रसेल एम नेल्सन और रिचर्ड जी स्कॉट 12 प्रेरितों के परिषद से कृपा कर सुनेंगे।
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वी एक्सप्रेस आवर डीपेस्ट फीलिंग्स ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर यू। वी आर ग्रेटफुल फॉर आवर असाइनमेंट्स अमंग यू। On a recent flight, our pilot announced that we would encounter turbulence during our descent.
और सारे यात्री सुरक्षा के लिए अपनी सीट पट्टी बांध लें। सच में गड़बड़ी आती है, ये सच में शांत होती है। रास्ते के उस तरफ मेरी पंक्ति के कुछ पंक्तियों पीछे एक महिला अत्यधिक दहशत में थी। हर एक भयंकर उतार और झटकों के साथ वह जोर से चिल्लाती थी। उसका पति उसे दिलासा देने की कोशिश करता परंतु कुछ फायदा नहीं होता था। उसका चिल्लाने का दौरा और बढ़ जाता जब तक हम उस गड़बड़ी के क्षेत्र से सुरक्षित भूमि पर न आ जाए गए। उसके उत्तेजना के समय के दौरान मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था क्योंकि भय का इलाज विश्वास है। मैं खामोशी से चाहता रहा कि काश मैं उसके विश्वास को दृढ़ कर सकता। बाद में जैसे सारे यात्री हवाई जहाज से जाने लगे, इस महिला का पति मेरे से बोलने लगा था। उसने कहा, मुझे माफ कीजिए, मेरी पत्नी बहुत डरी हुई थी। मैं सिर्फ उसे बताकर शांत कर सकता था कि एल्डर नेल्सन इस हवाई यात्रा में है तो डरने की कोई बात नहीं है। मुझे मालूम नहीं कि उस हवाई यात्रा में मेरी उपस्थिति उसको कुछ आराम दे सकती थी कि नहीं, परंतु मैं कहा कह सकता हूँ कि नाश्वर जीवन की एक सच्चाई है। हमारे विश्वास की परीक्षा और चुनौतियां होती है। कभी कभी वो परीक्षा आती है जब हम किसी जीवन और मौत के बीच का सामना कर रहे होते हैं। ये भयभीत महिला के लिए उग्र हवाई यात्रा ऐसा ही एक सच्चाई का लम्हा था जब हम हमारे विश्वास को दृढ़ता के साथ आमना सामना करते हैं। जब हम विश्वास के लिए बोलते हैं, विश्वास जो पहाड़ों को भी हिला सकता है, हम विश्वास को साधारणता में नहीं बोलते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना सहारा हो सकता है, जैसे हम उसके विषय में सीखते हैं और हमारा धर्म जीते हैं। यीशु मसीह का सिद्धांत प्रभु द्वारा हमें विश्वास में बढ़ने में मदद करने के लिए बनाया जाता है। आज की भाषा में तथापि धर्म शब्द का अर्थ भिन्न लोगों के लिए भिन्न बात होती है। धर्म शब्द का असली अर्थ है परमेश्वर से दोबारा से बांधना और वापस बांधना। प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हम सच में परमेश्वर से बंधे हैं जिससे हमारा विश्वास दिखाई दे, या हम सच में किसी दूसरी चीज से बंधे हैं? उदाहरण के लिए, मैंने सोमवार सुबह व्यवसाय योद्धा खेलों के विषय में एक वार्ता सुनी थी जो कि आने वाले रविवार को होने वाली थी। ऐसे ही कुछ रोगी प्रशंसक के लिए मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उनका धर्म उन्हें वापस बांधेगा सिर्फ कुछ उछालती गेंदों के साथ। हम में से प्रत्येक अपने आप से पूछ सकते हैं, हमारा विश्वास कहाँ है? क्या यह टीम में है? क्या यह ब्रांड में है? क्या यह प्रसिद्धि में है? यहां तक बहुत अच्छी टीम भी असफल हो सकती है, प्रसिद्धि फीकी पड़ सकती है। यहां सिर्फ एक है जिसमें आपका विश्वास हमेशा सुरक्षित रहता है, और वह है प्रभु यीशु मसीह, और आपको अपना विश्वास दिखाने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपनी पहली 10 आज्ञाओं में घोषणा की थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। उसने ये भी कहा, अपने हर विचार में तू मुझे देखना, शक न करना, मेहर न करना। अभी भी बहुत से लोग शांति के लिए अपने बैंक के खाते को देखते हैं या मानव जाति का अनुसरण करते हैं। क्लिशियंस, एकेडमिकों और राजनीति करने वालों को अक्सर विश्वास की परीक्षा देनी पड़ती है। अपने लक्ष्यों का पीछा करते हुए क्या उनका धर्म दिखता है, या वह छुपा रहता है? क्या वे परमेश्वर का की ओर लौटते हैं और मनुष्य की ओर? ऐसी परीक्षा मैंने 10 साल पहले दी थी जब मेरी चिकित्सक व्यवसाय के एक साथी ने सजा दिलाई मेरे धर्म को दोषी बनाकर, जब मैंने व्यवसाय के ज्ञान को अलग करने में असफल हुआ था। उसने मांग की कि मैं दोनों को मिलाऊंगा नहीं। मैं वैसा कैसे कर सकता था? सच्चाई सच्चाई है, ये विभाज्य नहीं है, और इसके किसी भी भाग को अलग नहीं कर सकते। कहीं सच्चाई विज्ञान के परीक्षालय से प्रकट हो या प्रकटीकरण से, सारे सच परमेश्वर की तरफ से प्रकट होते हैं। सारी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का भाग है। हाँ, मुझसे मेरे विश्वास को छुपाने के लिए कहा गया था। मैं अपने साथी के अनुरोध से इत्तेफाक नहीं रखता था, मैंने अपना विश्वास दिखाया। सभी व्यवसाय में प्रयत्न किए जाते हैं, परिशुद्धि की जरूरत से स्तर सख्त होते हैं, विद्वान अपनी आजादी के एहसास से खुशनुमा रहते हैं, परंतु पूरी आजादी का अनुभव नहीं हो सकता अगर एक भाग का ज्ञान इंसानों के द्वारा बंधनों पर राज करने का फरमान हो। धार्मिकता की सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है, विशेषकर पवित्र आज्ञाएं। पवित्र आज्ञाओं का पालन करने से आशीष आती है हर समय। पवित्र आज्ञाओं को तोड़ने से आशीष खत्म हो जाती है हर समय। समस्याएं भरपूर हैं क्योंकि संसार अपूर्ण लोगों की जनसंख्या से भरा हुआ है। उनके वस्तुगत और इच्छाएं उनके विश्वास की भरी प्रभाव से प्रभावित है या उसमें कम है। बहुत से अपनी अन्य प्राथमिकताओं को परमेश्वर से आगे रखते हैं। आधुनिक जीवन में धर्म की कुछ सद्बुद्धता चुनौतियां हैं, जैसे हर युग में, तो आज यहाँ पर कुछ है जो उपास करते या धर्म की मुफ्त निंदा का अभ्यास करते हैं। कुछ यहाँ तक जगत की कमजोरियों की दुहाई देकर दोष लगाते हैं, स्वीकारते हैं। समय हुआ करता था जब धर्म के नाम पर अति निर्दयता की जाती थी, परंतु प्रभु के शुद्ध धर्म को जीने से, जिसका मतलब है यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनाने का प्रयत्न करना, जीवन का एक तरीका है और दैनिक वचनबद्धता जो कि पवित्र मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। जैसे आप अपने धर्म का पालन करते हैं, आप अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, आपको अपना विश्वास दिखाना होगा। प्रभु जानता था कि उसके बच्चे को कैसे उसे दृढ़ पाना सिखाने की आवश्यकता है। सकर है द्वार, और उसने कहा, और सकर है रास्ता जो उस कष्टता की ओर ले जाएगा, और वहां कुछ ही होंगे जो उसे पाएंगे। धर्मशास्त्र ही खोजने का उत्तम रास्ता प्रदान करते हैं और उसी पर रुके रहने का। धर्मशास्त्र का ज्ञान सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, पूरे इतिहास में शिशु जन्म रोग के संक्रमण हुआ, जिसमें कई मासूम माताओं और शिशुओं की जान ली गई थी। इसके अलावा पुराना नियम ही सही नियम थे संक्रमित मरीजों को संभालने के लिए। तकरीबन 3000 सालों पहले लिखा गया था। बहुत से लोग नष्ट हो गए थे क्योंकि लोग ज्ञान के लिए प्रश्न करते प्रभु के शब्दों को सुनाने में असफल होते थे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में क्या भूल रहे हैं? यदि हम ज्ञान की सच्चाई को जानने में परंतु कभी योग्य ना होने सीखेंगे, धर्मशास्त्रों से हम महान ज्ञान पा सकते हैं और विश्वासी प्रार्थना से प्रेरणा लेते हैं। ऐसा करने से हमारी मदद होगी, जैसे हम रोज का निर्णय लेते हैं, विशेषकर जब इंसान के नियमों को बनाए जाते हैं और लागू किए जाते हैं। परमेश्वर के नियम कभी भी हमारे स्तर के होने चाहिए। विवादास्पद निर्णयों के साथ सौदा करना, हमें पहले परमेश्वर के निर्देश की खोज कर लेनी चाहिए। हमें उन धर्मशास्त्रों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हमारे लाभ और शिक्षा के लिए हमें दिया गया है। खतरा छिपा रहता है जब हम अपने आप का भाव के साथ बांटने में की कोशिश करते हैं, जैसे मेरी निजी जिंदगी या मेरा अच्छा बर्ताव। अगर कोई भी अपने जीवन को भागों में बांटता है, जैसे कि अलग कमरे हो, कभी भी कोई भी अपनी व्यक्तिगत अखंडता से पूरी तरह ऊंचा उठ नहीं पाएगा, कभी भी सारा नहीं हो पाएगा अपने वास्तविक सच से।
The temptation to be popular may prioritize.
लालची होना लोकप्रिय लोगों के सालानुसार परमेश्वर के शब्दों से ऊपर हो गया है। राजनीति, प्रचार और बाजार भाव नीति लोगों की सलाह से मतदान उनकी योजना को शक्ल देता है। ऐसे मतदान के परिणाम जानकारी देते हैं, परंतु उन्हें शायद ही न्याय भूमि पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन ना करने पर कभी इस्तेमाल किया हो। यदि हाँ, यहाँ भी यदि सभी उसे करते तो गलत कभी सही नहीं होता। बुराई, गलती और अंधकार कभी भी सच नहीं हो सकते, यहाँ तक यदि लोकप्रिय क्यों करना हो। एक धार्मिक चेतावनी जिसे की घोषणा की गई है, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजाला और उजाले को अंधियारा कहते हैं। विश्व युद्ध एक के बाद बल्कि रेस्क्यू का एक गीत लोकप्रिय हो गया था। अनाश्वर का प्रचार करने में उसने वादा किया कि 50 लाख लोग गलत नहीं हो सकते, परंतु वास्तविकता में 50 लोग गलत हो सकते हैं, पूरी तरह से गलत। अनाश्वरता सिर्फ अनाश्वरता है परमेश्वर की दृष्टि में, जो एक दिन हम सबको हमारे कामों और कामनाओं से न्याय करेगा। डर और अविश्वासी की तुलना आज संसार में बहुत प्रचलित है। विश्वास और मेरी प्यारी बेटी एमिली के प्रोत्साहन के साथ, जब भी पर्दों के उस पार जी रही हैं, जैसे उसने नाश्वर जीवन के कैंसर के कमजोर शरीर को छोड़ा था। वह मुश्किल से ही बोल पा रही थी, परंतु उसके चेहरे की मुस्कुराहट के साथ उसने मुझसे कहा था, पापा मेरे बारे में चिंता ना करना, मैं जानती हूं मैं ठीक हो जाऊंगी। एमिली का विश्वास दिख रहा था, तेजस्वी दर्शन उन करुणा भरे लम्हों में सही है ना जब हमें इसकी अधिक जरूरत होती है। इस सुंदर पांच बच्चों की युवा माँ के पास उसके स्वर्गीय पिता में, उसकी योजना में और उसके परिवार के अनंत कल्याण में पूरा विश्वास था। वह निर्भयता से परमेश्वर के पास लौट रही थी। वह प्रभु के और पति के साथ बनाए गए अनुबंधों को पूरी तरह विश्वसनीय रही। वे अपने बच्चों से प्रेम करती थी, परंतु शांति से। उसने जुदा होने के बावजूद भी उसे अपने भविष्य में और उसके भी भरोसा था, क्योंकि उसने अपने स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र में विश्वास था। वास्तव में 1986 में अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा है, वास्तव में हम हर उपहास का अनुभव और विरोधियों से मिलने का सामना करते हैं। चलो हम हिम्मत से सर्वसम्पत्ति से चुनौती दें, हिम्मत से नियमों के लिए खड़े हो। हौसला समझौता नहीं, परमेश्वर की मुस्कुराहट लाना अनुमति होती है। याद रखिए कि सभी मनुष्य के पास उसका भय होता है, परंतु वे जो हौसले के साथ भय का सामना विश्वास के साथ भी करते हैं। अध्यक्ष मॉन्सन की सलाह असमय के लिए है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, दिन प्रतिदिन आपका रास्ता अनंत मंजिल की ओर बढ़ता जाए। अपना विश्वास बढ़ाएं, अपने विश्वास की घोषणा करें। चलो अपना विश्वास दिखाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सुरक्षा पूर्व परमेश्वर के पास लौटेंगे, कि उसकी अनंत सच्चाई को आप दिल में हमेशा के लिए खोद लेंगे। और मैं प्रार्थना करता हूं कि जीवन भर आप अपना विश्वास दिखाएंगे यीशु मसीह में। आमीन।
इसका महत्तम उदाहरण जो पृथ्वी पर कभी हुआ, वह हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। वह हमें इस परिपूर्ण उदाहरण का अनुसरण करने के लिए निमंत्रण देता है। जब मैं सुसमाचार बांटने की जिम्मेदारी पर मनन किया है, मैंने उस परिवर्तन विचार किया जिसके उदाहरणों में मुझे निर्धारित दिव्य मार्ग को खोजने में मदद की थी, जिससे मेरी आत्मिक प्रगति में सहायता की थी। मेरे जीवन में महत्वपूर्ण समय पर स्वर्गीय पिता ने किसी न किसी को मदद के लिए भेजा, ताकि वे मुझे चुनाव उचित दिशा हो। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरे पिता गिरजे के सदस्य नहीं थे। मेरी माँ गिरजे में कम आती जाती थी। हम वाशिंगटन डीसी में रहते थे और मेरी माँ के माता पिता वाशिंगटन राज्य के 4,000 किलोमीटर दूर रहते थे। मेरे 8वें जन्मदिन के कुछ महीने बाद दादी विट्टल हमसे मिलने आई। दादी को चिंता थी कि ना तो मेरे बड़ा भाई और ना ही मेरा बपतिस्मा हुआ था। मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे माता पिता से क्या कहा, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक सुबह वह मेरे भाई और मुझे एक पार्क में ले गई और बपतिस्मा लेने और नियमित गिरजे जाने के महत्व के बारे में बताने अपनी चिंता हमें बताई। मुझे उनके शब्द ठीक से याद नहीं, लेकिन उस शब्दों में ने मेरे हृदय को हलचल पैदा कर दी और जल्द ही मेरे भाई और मेरा बपतिस्मा हो गया। दादी निरंतर हमारी मदद करती रही। मुझे याद है जब कभी मेरा भाई या मुझे गिरजे से बोलने के लिए कहा जाता, हम उन्हें कुछ सुझाव देने के लिए फोन करते थे और कुछ समय बाद उनके सुझाव रूपरेखा में बदल गए ताकि हम भी अपने स्तर परवर्ता तैयार करें। दादी ने हमारे पिता को हमें गिरजा सभाओं में ले जाने के महत्व को पहचाने के लिए सही मात्रा में प्रोत्साहन और आदर का उपयोग किया गया था। प्रत्येक उचित तरीके से उन्होंने हमें हमारे जीवनों में से सुसमाचार की जरूरत को महसूस करने की मदद की थी। सबसे महत्वपूर्ण था, हम जानते थे दादी हमसे प्रेम करती थी और वह सुसमाचार से प्रेम करती थी। वह एक शानदार नमूना थी। मैं उसकी उनकी गवाह ही बहुत आभारी हूँ जो उन्हें मेरे साथ बांटी थी जब मैं बहुत छोटा था। उन्हें प्रभाव ने मेरे जीवन की दिशा को अनंत के लिए बदल दिया था। बाद में जब मैं विश्वविद्यालय के स्थानक होने वाला था, मुझे जिनन वाटकिमी नाम की एक सुंदर युवती से प्रेम हो गया। मैंने लगा कि उसे भी मुझसे गहरा लगाव होने लगा था। एक शाम हम भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। उसने बहुत प्रेम से हमारी बातचीत में अपनी बात रखी जिसमें मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल दिया गया। उसने कहा था, जब मैं विवाह करूं तो मुझे मंदिर में एक विश्वसनीय मिशन से लौटा प्रचारक होना चाहिए। इससे पहले मैंने मिशन के बारे में अधिक सोचा नहीं था। उस शाम प्रचारक सेवा करने का मेरी प्रेरणा नाटकीय रूप से बदल गई। मैं घर गया और किसी अन्य बात पर विचार नहीं किया पाया। मैं पूरी रात जागा रहा। अगले दिन मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई से पूरी तरह हट गया था। काफी प्रार्थना करने के बाद मैंने अपने धर्माध्यक्ष से मिलने का निर्णय लिया और अपनी प्रचारक सेवा का आवेदन करना आरंभ कर दिया। जेनी ने मुझे कभी उसके लिए प्रचारक सेवा करने को नहीं कहा था। उसने प्रेमवश अपनी धारणा को मुझसे बांटा था और फिर मुझे अपने जीवन को सही दिशा देने का मौका दिया था। हम दोनों ने प्रचारक सेवा की थी और बाद में मंदिर के मुरबंद हुए थे। अपने विश्वास के प्रति जेनी के साहस और दृढ़ता ने मिलकर हमारे जीवन को संपूर्ण प्रभाव डाला था। मुझे अच्छी तरह पता है कि पहले प्रभु की सेवा करने से सिद्धांत में उसके मजबूत विश्वास के बिना हमें यह आनंद प्राप्त नहीं होता। वह एक शानदार सच्चा उदाहरण है। दादी विट्टल और जैनी दोनों ने मुझे से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपनी दृढ़ता को बांटकर के सुसमाचार की विधि और स्वर्ग के पिता की सेवा में जीवन को आशीषित करेगी। इन दोनों में से किसी ने भी मुझ पर दबाव नहीं डाला, ना ही मुझे स्वयं के बारे में बुरा महसूस कराया। उन्होंने केवल मुझे से स्वर्ग के पिता से प्रेम किया था। दोनों जानते थे परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी स्वयं की क्षमता से अधिक कर सकता था। दोनों ने मुझे प्रेम से महानता, मेहनत, खुशी के मार्ग को खोजने में मदद की थी। हम सब किसी प्रकार ऐसी विशेष प्रभाव बन सकते हैं। हमें निष्ठा से उनसे प्रेम करना चाहिए जिन्हें हम धार्मिकता से मदद करना चाहते हैं, ताकि वे परमेश्वर के प्रेम में भरोसा करना आरंभ कर सकते हैं। संसार में बहुतों के लिए सुसमाचार को स्वीकार करने की चुनौती स्वर्गीय पिता में विश्वास को विकसित करना है। इस प्रकार के विश्वास का विकास करना सरल हो जाता है जब उनके पास उसी समान परिवार के सदस्य या मित्र होते हैं जो उनसे वैसा ही प्रेम करते हैं और जैसे स्वर्गीय पिता करता है। उन्हें आपके प्रेम में आत्मविश्वास देने से उन्हें परमेश्वर के विश्वास विकसित करने में मदद मिलती है। फिर उनकी प्रेमपूर्ण विचारशील बातचीत द्वारा उनके जीवन आपके सीखे पाठों, अनुभवों और अपने संघर्षों के लिए उपायों को बांटने से आशीषित होंगे। उनकी भलाई के प्रति अपनी अच्छी इच्छा प्रकट करो, फिर यीशु मसीह के सुसमाचार की गवाही को बांटो। आप उन तरीकों से मदद कर सकते हो जो सिद्धांत और नियम पर आधारित हों, जिन्हें आप प्रेम करते हैं उन्हें यह जानने के लिए उत्साहित करें जो प्रभु में उनसे करवाना चाहता है। ऐसा करने का एक तरीका प्रश्न पूछना है जो उन्हें सोचने के लिए तैयार करते हैं और फिर उन्हें स्वयं विचार करने और उत्तर खोजने के लिए प्राप्त दें, बेशक घंटे, दिन, महीने या इससे भी अधिक। आप उन्हें प्रार्थना करने और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर पहचानने में मदद कर सकते हो। यह जानने में उनकी मदद करें कि इन उत्तरों को पाने और पहचानने के लिए धर्मशास्त्र अति महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस तरह से आप उन्हें भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के तैयार करेंगे।
You will help them prepare for future opportunities and challenges. God's purpose is to
मनुष्य के अमृतत्व और आनंद जीवन को पूरा करना परमेश्वर का उद्देश्य है। जो कुछ हम करते हैं यह उसका सबका आधार है। कई बार हम उन बातों से में इतने अधिक लिप्त या संसारिक जिम्मेदारियों के बीच में ऐसे फंस जाते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य हमारी दृष्टि ओझल हो जाता है। जब आप निरंतर अपने जीवन को सबसे बुनियादी सिद्धांतों पर प्रेरित करते हैं, जब कार्य करते हैं, आपको उसकी समझ मिलेगी और आप प्रभु के लिए अधिक सफल होंगे और स्वयं के लिए अधिक खुशी पाओगे। जब आप अपने जीवन को उधार की योजना के बुनियादी सिद्धांतों पर केंद्रित करते हैं, आप उन बातों को बांटने पर अच्छी तरह ध्यान देंगे क्योंकि आप सुसमाचार की विधियों के अनंत महत्व को समझते हैं। आप जानते हैं उसे इस तरह बांटने कि आपके मित्र आत्मिक रूप से बल पाने की चाह करेंगे। आप अपने प्रियजनों को उसकी सभी आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करने और यीशु मसीह का नाम धारण करने में मदद करेंगे। याद रखें, लोगों का परिवर्तन कार्य का केवल हिस्सा है। हमेशा परिवारों को मजबूत करने का प्रयास करें। परिवारों को मंदिर के मुहरबंद होने के दिव्य दर्शन के साथ सिखाएं। कुछ परिवारों के साथ इसमें सालों लग जाते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था। अपने बपतिस्मे के कई साल बाद मेरे पिता ने बपतिस्मा लिया और बाद में मेरा परिवार मंदिर में मुहरबंद हुआ। मेरे पिता ने मंदिर में मुहरबंद करने वाले के रूप में सेवा की और मेरी माँ के साथ वहाँ सेवा की थी। जब आपके पास मंदिर के मुहरबंद होने का दिव्य दर्शन है, आप पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य बनाने में मदद करेंगे। उनसे प्रेम करना याद रखें जिनकी आप मदद करते हैं। उन्हें प्रभावित करने का यह सबसे शक्तिशाली प्रभाव है। मेरी दादी विट्टल और मेरी पत्नी जिनन का प्रभाव बहुत कम होता यदि मुझे यह मालूम ना होता कि वो मुझसे प्रेम करते हैं और वो मुझसे जीवन में उत्तम चाहते हैं। उस प्रेम के एक साथी की तरह उन पर भरोसा करें। कुछ परिस्थितियों से में भरोसा करना कठिन लग सकता है, लेकिन उन पर भरोसा करने पर कुछ तरीका खोजें। स्वर्गीय पिता के अच्छे के बच्चे आश्चर्यजनक कार्य कर सकते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि उन पर भरोसा किया जाता है। परमेश्वर का प्रत्येक बच्चा इस नश्वर संसार के उद्धारकर्ता की योजना को चुनता है। भरोसा रखें कि मौका मिलने पर वे ऐसा दोबारा करेगा। उन सिद्धांतों को बांटें जो उसकी मदद करते हैं, जिन्हें आप प्रेम से अनंत जीवन के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करते हो। याद रखें, हम सभी धीरे धीरे सीखते हैं। अपने भी सुसमाचार की अपनी समझ के लिए इसी नमूने का अनुसरण किया है। सुसमाचार को बांटना सरल रखें। यीशु मसीह के बलिदान की आपकी निजी गवाही एक शक्तिशाली औजार है। इसके साथ प्रार्थना, मर्मन की पुस्तक और अन्य धर्मशास्त्र और पौरातत्व विद्याओं के प्रति आपकी दृढ़ता अन्य स्रोत हैं। ये सब आत्मा जो कि भरोसा करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि दिशा को सरल करेगा। प्रभावकारी होना और जैसा मसीह ने किया वैसा करने के लिए सुसमाचार के इस मूलभूत सिद्धांत पर ध्यान दें। यीशु मसीह का बलिदान हमारा स्वर्ग पिता की तरह बनना संभव करता है। इसलिए हम अनंत रूप से अपने परिवारों के साथ रह सकते हैं। हमारे कार्य के लिए कोई भी सिद्धांत इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना यीशु मसीह का बलिदान। प्रत्येक उचित अवसर का उद्धारकर्ता और उसके परिश्चित बलिदान के शक्ति की गवाही दें। धर्मशास्त्रों का उपयोग करें जो उसके विषय में सिखाते हैं और बताते हैं कि क्यों वह हर किसी के जीवन के लिए परिपूर्ण नमूना है। आपको मेहनत से अध्ययन करने की आवश्यकता है। गैर जरूरी कामों में अपना समय नष्ट ना करें जो आपको सिद्धांत सिखाने में से भटकाते हैं। सिद्धांतों की मजबूत व्यक्ति बुनियाद के साथ आप सच्चाई को शक्तिशाली रूप से उन्हें बांट सकते हैं जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है। हम अपने स्वर्गीय पिता की अति उत्तम सेवा दूसरों को धार्मिक रूप से प्रभावित और सेवा करके कर सकते हैं। इसका महानतम उदाहरण जो पृथ्वी पर कभी हुआ वह हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। उसकी नश्वर सेवा, शिक्षा, सेवा और दूसरों से प्रेम करने से भारी थी। वह उनके साथ बैठा जिन्हें उसके लिए अयोग्य समझा गया था, उन्हें सबसे प्रेम किया। उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पहचाना और उन्हें अपना सुसमाचार सिखाया। वह हमें इस परिपूर्ण उदाहरणा का अनुसरण करने के लिए निमंत्रित देता है। मैं जानता हूं कि सुसमाचार इस जीवन के शांति और सुख मार्ग का है। हम उसका अनुसरण करना याद रखें। हम अपना प्रेम, भरोसा और सच्चाई का ज्ञान उसके साथ बांटें जिन्होंने सुसमाचार के चमत्कार को गले लगाया। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Thank you, brethren. The choir and congregation will now stand and join in singing. We thank thee, O God, for a prophet.
After the hymn. धन्यवाद भाइयों, अब गायक मंडली और कलीसिया साथ खड़े होकर मिलकर गाएगी We thank you, God, for a prophet. गीत गाए जाने के बाद एल्डर रॉबर्ट डी हिल्स 12 प्रेरितों के परिषद हमें संबोधित करेंगे। उनके बाद एल्डर्स क्लॉड डे ज्विक और डब्ल्यू क्रेग ज्विक 70 के।
दिस इज द 184th एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स।
brothers and sisters, of all of us.
हमें उद्धारकर्ता के जीवन से सारे सबक सीखने हैं, सिवाय आज्ञा पालन के सबक के कोई भी अधिक साफ और शक्तिशाली नहीं है। स्वर्ग में नाश्वत से पूर्व परिषद में लूसीफर ने स्वर्गीय पिता की योजना के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। जिन्होंने लूसीफर का अनुसरण करना चुना था, उनकी अनंत प्रगति का अंत हो गया था। ध्यान से, आप किसके अनुयायी हैं? तब यीशु ने अपना वचन वध होने का पालन कर व्यक्त किया था। कहता है, पिता तेरी मर्जी पूरी हो और सर्वदा तेरी महिमा हो। अपनी पूरी सेवकाई के दौरान उसने लालच का सामना किया, परंतु उसको महत्व नहीं दिया। सच में उसने आज्ञाकारी होने के द्वारा जिसका वह सामना कर रहा था, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता के आज्ञाकारी थे, उसने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया था, हमारे पुनरुत्थान को संभव बनाया और हमारे स्वर्गीय पिता के पास लौटने के लिए रास्ता तैयार किया है। जो जानता था कि हम गलतियां करेंगे, जैसे हम नाश्वत में पालन करते हैं, जब हम आज्ञा मनाते हैं, हम उसके बलिदान को ग्रहण करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि मसीह के प्रायश्चित के द्वारा सारी मानव जाति नियमों के प्रति आज्ञाकारी होने और सुसमाचार की धर्म विधियों के द्वारा बचाई जा सकती हैं। यीशु ने हमें साधारण भाषा में पालन करना सिखाया था, जो कि आसानी से समझी जाती है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे।
When we are baptized, we
जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने ऊपर मसीह का नाम लेते हैं और परमेश्वर के साथ अनुबंध कर प्रवेश करते हैं कि हम अपने जीवन के अंत तक आज्ञाकारी बने रहेंगे। हर रविवार को हम प्रभु भोज लेने के द्वारा बपतिस्मे के अनुबंध का नवीनीकरण करते हैं और साक्षी देते हैं कि हम इच्छा अनुसार आज्ञाओं का पालन करेंगे। हम हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा के साथ किसी भी विचारों में, एहसासों या कार्य करने में लय नहीं बनाते हैं, के लिए समाधान को खोजते हैं और हम अन आज्ञाकारिता से दूर होकर पश्चाताप करते हैं और फिर से पालन करने के द्वारा शुरुआत करते हैं।
As we live the gospel, we
जैसे हम सुसमाचार को जीते हैं, हम हमारी आज्ञा पालन करने की समझ में उन्नति करते हैं। कुछ समय हम जिसे स्वाभाविक प्रकृति की आज्ञा पालन कहते हैं का अभ्यास करते हैं, जिसमें हम परमेश्वर के नियम, जो हमारे अपने ज्ञान और इच्छा के लिए थे, को नकारते हैं, क्योंकि इसका व्याप के अभ्यास बहुतों के द्वारा होता था। परमेश्वर के स्तर की आज्ञा पालन के पथभ्रष्ट होना हमारी संस्कृति में और हमारे कानून में होने लगा।
At times, members may participate.
समय समय पर सदस्य आज्ञा पालन करने के चुनाव में भाग लेकर परमेश्वर का आदर और प्रेम का दावा करते हैं। जब कौन सी आज्ञा और शिक्षा का और उसके भविष्यवक्ताओं की सलाह और शिक्षाओं को खोज और चुनाव कर हम पूरी तरह से अनुसरण करेंगे। कुछ चुनाव कर पालन करते हैं क्योंकि वे आज्ञा के लिए सारे कारणों को नहीं देख सकते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे हमेशा अपने अभिभावकों के नियमों को समझ नहीं पाते हैं। परंतु हम हमेशा से एक कारण जानते हैं, हम भविष्यवक्ताओं का अनुसरण करते हैं क्योंकि ये यीशु मसीह का गिरजाघर है और ये है उद्धारकर्ता जो अपने भविष्यवक्तों को सारे युगों में निर्देशन देता है।
As As our understanding of obedience,
जैसे हमारी आज्ञा पालन करने की समझ गहरी होती जाती है, हम स्वतंत्रता की विशेष भूमिका को पहचानते हैं। जब यीशु गतसमनी के बगीचे में था, उसने अपने स्वर्ग में पिता से 3 बार प्रार्थना की, बोलते हुए, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। परमेश्वर ने उद्धारकर्ता की स्वतंत्रता की अवहेलना नहीं की। अब तक वह दयालु था और अपने स्वर्गदूत को अपने प्रिय पुत्र को शक्ति देने के लिए भेजा था। उद्धारकर्ता ने गुलगुता में एक और परीक्षा से अवगत हुआ, वहां जहां पर स्वर्गदूतों की सेना को, जो उसे क्रूस से नीचे उतर सकती थी, बुला सकता था, परंतु वह अपने स्वयं के चुनाव पर अंत तक आज्ञाकारी बना रहा और प्रायश्चित के बलिदान को पूरा किया, यहाँ तक इसका मतलब था पीड़ा और मौत। आत्मिकता में परिपक आज्ञा पालन उद्धारकर्ता का आज्ञा पालन करना है। ये स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र के लिए सच्चा प्रेम की प्रेरणा देता है। जब हम इच्छा अनुसार पालन करते हैं, जैसा उद्धारकर्ता ने किया था, अपने स्वर्गीय पिता के शब्दों को हम दिल में रखते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, और हम आगे बढ़कर सुनते हैं अपने स्वर्ग पिता की उपस्थिति में प्रवेश करने से। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, स्वामी के आनंद में सहभागी हो। अपने आज्ञा पालन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने का अर्थ है चुनना, जो सही है वही करो और परिणाम को होने दो। इसमें स्वयं दक्षता और भरोसा आता है, अनंत आनंद और अपने में पूरा करने का विवेक आता है, उदाहरण के द्वारा जो हमारे आसपास है, और इसमें हमेशा से शामिल है पुरोहित्य मार्गदर्शों का समर्थन करने की गहन व्यक्तिगत वचनवेदता और उनकी शिक्षा और सलाह को मानना। चुनाव करने से क्या हम पालन करेंगे, ये हमेशा हमारे चुनावों के परिणामों को याद रखने में मदद करता है। लूसिफर और उसके अनुयायियों ने स्वर्गीय पिता की योजना को नकार कर क्या परिणामों को समझा था? यदि हाँ, तो क्यों कर उन्होंने ऐसा भयानक चुनाव किया था? हम अपने आप से वही प्रश्न पूछ सकते हैं। क्यों हम में से कोई पालन न करने को चुनाव करता है, जब हम पापों के अनंत परिणामों को जानते हैं? धर्मशास्त्र उत्तर प्रदान करता है। कारण केन और आदम और हवा के कुछ बच्चों ने पालन न करने को चुना था, क्योंकि वे परमेश्वर से अधिक शैतान से प्रेम करते थे। हमारा उद्धारकर्ता के प्रति प्रेम ही उद्धारकर्ता समान आज्ञा पालन करने की कुंजी है। जैसे हम आज के जगत में आज्ञा पालन करने का प्रयत्न करते हैं, हम अपने प्रेम और आदर को अपने स्वर्गीय पिता के सभी बच्चों के लिए घोषित करते हैं। इस प्रेम को दूसरों के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं में परिवर्तन करना असंभव है, जो हमारे अच्छे के लिए दी गई है। उदाहरण के लिए आज्ञा, तू हत्या न करना, ना ही ऐसा कुछ उसके लिए करना, कि आत्मिक नियमों में पाया जाता, जो परमेश्वर के सारे बच्चों को सुरक्षा देते हैं, यहाँ तक अजन्मों को भी। पुराने अनुभव बताते हैं कि जब हम इस नियम को नजरअंदाज करते हैं, दुखों की कोई सीमा नहीं होती। बहुत से मानते हैं कि अजन्मे शिशु के जीवन को कारणों से या सुविधा के लिए समाप्त करना स्वीकार योग्य है। बुद्धिवाद से आज्ञा पालन न करना आत्मिक नियम को या उसके परिणामों को बदलेगा नहीं, परंतु उल्लंघन, अस्थिरता, अनजान राहों में भटकना और शोक की ओर ले जाता है। मसीह के शिष्य के रूप में हमारे पास उसके नियमों और आज्ञाओं को रखने का पवित्र दायित्व है।
and commandments and the covenants upon which we take upon us. In December 1831
में कुछ भाइयों को शत्रुता की अनुभूतियों को शांत करने के लिए बुलाया गया था जो कि गिरजे में उत्पन्न हो रही थी. भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा प्रभु ने उन्हें विचित्र तरीकों से और आश्चर्य ढंग से रास्ते का निर्देश दिया था. अपने दुश्मन को हराना, उन्हें सार्वजनिक और निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाना, तथापि उन्हें प्रभु के विरुद्ध ठोस कारण लाने होंगे. कोई भी हथियार जिसे आपके विरुद्ध बनाया गया हो पनपेगा नहीं, और यदि कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध आवाज उठाए उसे मेरे अपने स्वयं के समय में पराजित करेंगे. इसलिए मेरी आज्ञाओं का पालन करो, वो जो सच्चे और वफादार हों. धर्मशास्त्रों में भविष्यवक्ताओं के उदाहरणों से भरा हुआ है जिन्होंने अपने स्वयं के अनुभवों से आज्ञा पालन करने के सबक सीखे हैं. जोसेफ स्मिथ को उसके हितकारी मित्र दबाव डालने से और मार्टिन हैरिस को लिपिकार बनाकर झुकने के परिणामों में सीखना पड़ा था. मार्टिन के अनुरोध के जवाब में जोसेफ स्मिथ ने प्रभु से मॉर्मन की पुस्तक के 116 हस्तलिपि को उधार में देने के लिए स्वीकृति मांगी थी ताकि मार्टिन उन्हें अपने परिवार को दिखा सके, परंतु प्रभु ने जोसेफ को ना देने को कहा था. मार्टिन ने जोसेफ से अनुरोध किया कि प्रभु से फिर से पूछे. जोसेफ के तीसरी बार अनुरोध पर प्रभु ने विशेष 5 लोगों को हस्तलिपि को देखने के लिए अनुमति दे दी थी. इस समझौते में अति विधिवत से अनुबंध से मार्टिन स्वयं अपने आप ही बंध गया था. जब वह घर पहुंचा तो दबाव उसके ऊपर था. वह अपनी विधिवत कसम को भूल गया और दूसरों को हस्तलिपि देखने की अनुमति दे दी. परिणाम स्वरूप उसके हाथ से वह युक्ति निकल गई. परिणाम स्वरूप जोसेफ को प्रभु द्वारा फटकार मिली और मॉर्मन की पुस्तक का लगातार अनुवाद करने की अनुमति से मना कर दिया गया था. जोसेफ ने पीड़ा उठाई और दूसरों के अभाव में आकर झुकने से उल्लंघन करने पर पश्चाताप किया था. शीतु के बाद जोसेफ को फिर से अनुवाद करने की अनुमति मिल गई थी.
जोसेफ
ने आज्ञा पालन करने का महत्वपूर्ण सबक सीखा था जिसे उसने अपने सारे जीवन भर किया. भविष्यवक्ता मूसा का एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है. जब मूसा ने आज्ञाकारिता से इथोपियन पत्नी कर ली थी, मिरियम और हारून ने उसके विरुद्ध बोला था, परंतु प्रभु ने उन्हें डांटा था, कहा उससे मैं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ. प्रभु ने इस घटना का प्रयोग कर हमारे युग के गिरजे के सदस्यों को सिखाया है. 1830 में हायरम पेज ने गिरजे के लिए प्रकटीकरण पाने का दावा किया था. प्रभु ने उसे सुधारा और संतों को शिक्षा दी थी, तुम्हें चीजों के प्रति आज्ञा पालन करना होगा जिसमें जोसेफ को जैसे हारून को दिया था दूंगा. वह उन्हें प्राप्त करेगा जैसा मूसा करता था. आज्ञा पालन करना आशीषें लाता है, और जब हम परमेश्वर से आशीषें प्राप्त करते हैं वह उस नियम की आज्ञा पालन करने के द्वारा प्राप्त होता है जिसमें इसके गुण होते हैं. आज्ञा पालन करना उदाहरण के द्वारा सिखाया जाता है. हम कैसे जीते हैं उसके द्वारा. हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपनी युवावस्था में बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सीखना. हाँ, अपनी युवावस्था में ही परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने को सीखना. आज्ञा पालन करना हमें प्रगतिशील शक्तिशाली बनाता है. भविष्य में परीक्षाएं और कठिनाइयों से विश्वसनीय होने से सहनीय योग्यता होती है. आज्ञा पालन करना उधारकर्ता का पालन करने से गतसमनी में तैयार किया और गुलगता में अंत तक सहने योग्य बनाया था. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आलमा के शब्दों ने मेरे दिल के एहसासों को व्यक्त किया है. और अब मेरे प्रिय भाइयों, मैंने तुमसे इन बातों को इसलिए कहा कि जिससे मैं परमात्मा के प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उसके प्रति तुम्हें सजग कर दूं, जिससे तुम उसके समक्ष निर्दोष जा सको। और अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम विनीत बनो, विनम्र और नेक बनो, हर समय परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में कमट रहो। मैं मेरी विशेष गवाही देता हूँ कि हमारे उद्धारकर्ता जीवित हैं, क्योंकि उसने पालन किया था प्रत्येक घुटना झुकेगा और सबकी जीभ अपने आप पापों को स्वीकार करेगी, क्योंकि वो ही हमारा उद्धारकर्ता है। हम उससे गहन तौर पर प्रेम करते हैं और उससे विश्वास करते हैं पूरी तरह से कि हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और हमारे परमेश्वर के राज्य में हमेशा के लिए वापस उसके साथ रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। एक छोटा लड़का पियानो का अभ्यास कर रहा था और उसे खिड़की से देखते हुए एक सेल्समैन ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ घर पर है? जिसका बच्चे ने उत्तर दिया, और आप क्या सोचते हैं? हमारे 5 प्यारे बच्चे पियानो बच्चे बजाते हैं। धन्यवाद हो मेरी पत्नी की प्रेरणा का। जब भी अध्यापक हमारे घर पर आते हैं, हमारा बेटा एंड्रियन भाग जाता और छुप जाता अपने पाठ को ना पढ़ने के लिए। परंतु एक दिन कुछ अद्भुत हुआ। उसे संगीत में प्रेम होने लगा, इतना कि वह खुद से ही नियंत्रण करने लगा। अगर हम अपने परिवार की प्रक्रिया से उस तथ्य तक पहुंच सके जो यह अद्भुत होगा, यह प्रशंसनीय होगा कि हम अपने मनों की गहराई में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने की इच्छा रखें, किसी के बिना हमें निरंतर याद दिलाए और एक दृढ़ता से कि यदि हम सही मार्ग का अनुसरण करें तो हम उनके आशीष प्राप्त करेंगे। उनका वादा धर्मशास्त्र में किया गया है। कई वर्ष पूर्व मैं अपनी पत्नी, हमारी बेटी एवलिन और एक पारिवारिक मित्र के साथ मेहमान के नेशनल पार्क गया था। वहाँ एक सबसे प्रसिद्ध मेहराब को कोमल चपाकर कहते हैं। हमने उस चपाकर तक पहुँचने के लिए पहाड़ चढ़ने का और करीब 1.5 मील चलने का निर्णय किया। हमने अपने मार्ग पर बड़े ही उत्साह से चलना आरंभ किया, परंतु कुछ ही पल चलने के बाद उन्हें आराम की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि मेरी इच्छा की वहाँ बहुत थी। मैंने अकेले ही चलने का निर्णय किया, बिना उस मार्ग की और ध्यान देते हुए जो लेना चाहिए था। मैंने अपने आगे चल रहे एक पुरुष का पीछा किया, जो कि बड़े ही विश्वास से आगे की ओर बढ़ रहा था। मार्ग अत्यधिक मुश्किल होता जा रहा था और मुझे एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदना पड़ा था। मुश्किलों के कारण से मुझे विश्वास था कि हमारे दल के महिलाएं ये कभी नहीं कह सकेंगी। अचानक से मैंने कोमल छपाकर देखा, परंतु मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ये देखकर कि वह एक ऐसे क्षेत्र में था जो मेरी पहुंच से बाहर था। बड़ी ही निराशा से मैंने वापस जाने का फैसला किया। मैंने बेताबी से प्रतीक्षा की जब तक कि हम फिर से मिलें। मैंने तुरंत सवाल किया, क्या तुम कोमल छुपाकर तक पहुंचे? उन्होंने खुशी से मुझसे कहा कि उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्ग दिखाने वाले चिन्हों का अनुसरण किया और बहुत सावधानी और कोशिश के साथ वे अपने लक्ष्य तक पहुंचे। दुर्भाग्यवश मैंने गलत मार्ग ले लिया था। मैंने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। हम इतनी बार सही मार्ग लेने की गलती करते हैं, दुनिया की विचारधारा के साथ अपने आप को ले लेते हैं। हमें निरंतर अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि क्या हम यीशु मसीह के वचनों के कर्ता बन रहे हैं। एक उम्दा सीख यूनुस के किताब में पाई जाती है, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। वैसे ही जैसे कोई शाखा तक दखलता में बनी नहीं रहती जब तक अपने आप फल नहीं देखती, वैसे ही तब भी हम एक सफल नहीं हो सकते जब तक कि मुझ में नहीं रहते। दाखलता मैं हूँ और तुम शाखाएं।
जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता, वह बहुत फलता है। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समानता का उपयोग करते हुए हम बहुत पास से देखते हैं कि उस उत्कर्ष रिश्ते को जो यीशु मसीह के साथ है और उसका प्रभाव जो हम में से हर एक पर रहता है, वह जड़ और तना है जो हमारे लिए जीवन फल की अनुगाई करता है। वह जड़ को अनुमति देता है हमारे पोषण तक हमें पर्याप्त फल दे सके। यीशु मसीह ने हमें इस तरह से सिखाया कि शाखाएं होते हुए भी ये प्राणी जो उस पर निर्भर हैं, हम कभी भी उनकी शाखाओं के मूल्य का कम अलंकन नहीं लगाएंगे। कुछ गलतियां गंभीर होती हैं और अगर हमें उन्हें समय पर सही ना करें तो हमें हमेशा के लिए सही रास्ते से अलग ले जाती हैं। यदि हम पश्चाताप और सुधार करें तो यह अनुभव हमें अपने आप को नम्र कर देंगे, हमारे कार्यों में परिवर्तन और एक बार फिर से हमें हमारे स्वर्गीय पिता के पास ले जाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी आधार के संदर्भ में जो कि एक आकस्मिक पल भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने अनुभव किया था। इस अनुभव से उधारकर्ता ने हमें सिद्धांतों के विषय में अमूल्य सीख दी जो हमें जीवन भर याद रखनी है। ये तब हुआ कि जब मार्टिन हार्सन में मॉर्मन की पुस्तक के पहले भाग के 116 अनुवादित पन्ने खो दिए थे। परमेश्वर की सलाह के अनुसरण न करने के कारण से जब पश्चाताप किया, भविष्यवक्ता को प्रतिकरण प्राप्त हुआ जो कि सिद्धांत और अनुभव के अध्याय में 3 में पाया जाता है। जैसा कि लिखा गया है भाग 1-7 में, मैं 3 सिद्धांतों की ओर ध्यान देना चाहूंगा। हमेशा याद रखना चाहिए, परमेश्वर के कार्य और उद्देश्य निराश नहीं करते। हमें मनुष्य का भय परमेश्वर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। आवश्यकता है निरंतर पश्चाताप करने की। भाग 13 में प्रभु हमें 4 कार्य सिखाता है जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। परमेश्वर की सलाह को अनसुना करना, परमेश्वर के सामने किए सबसे पवित्र वादा को तोड़ना, अपने निर्णय पर निर्भर रहना, अपने ज्ञान पर अभिमान करना। मैं प्रार्थना करता हूं कि हम कभी उस मार्ग की दृष्टि को नहीं खोएंगे ताकि हम हमेशा स्वर्गलोक से जुड़े रहें, ताकि दुनिया के धाराएं हमें बाहर ना ले जा सकें। अगर आप में से कोई परमेश्वर के भाग को छोड़ने की सीमा तक पहुंच जाए, किसी भी सीमा पर उस मार्ग के साथ में बहुत पछताएंगे के साथ आपको कड़वाहट महसूस होगी। परमेश्वर की सीमित को अनसुना करने की, परमेश्वर के सामने किए सबसे पवित्र वादों को तोड़ने की, अपने ही निर्णय पर निर्भर रहने की या अपने ही ज्ञान पर अभिमान करने की, अगर यह स्थिति है, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पश्चाताप करें और सही मार्ग पर वापस आ जाएं। एक समय एक पोते ने अपने दादा को जन्मदिन को बधाई के लिए कॉल किया। उसने उनसे पूछा कि वह कितने वर्ष के हो गए। उन्होंने कहा कि वह 70 वर्ष के हो गए हैं। उनके पोते ने कुछ क्षण के लिए सोचा और फिर पूछा, दादाजी क्या आपने पूरे वर्ष शुरुआत की? बचपन और जवानी के दौरान लोग सोचते हैं कि वह कभी बूढ़े नहीं होंगे। मृत्यु की सोच कभी जड़ लेती ही नहीं। वह बहुत बहुत बूढ़े लोगों के लिए है और वहां तक पहुंचना अभी अनंत काल तक दूर लगता है। जैसे समय बीतता है, महीने और मौसम जाते हैं, जब तक कि झुर्रियां आने लगती है, उत्साह कम होने लगती है, बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ने लगती है इत्यादि। वह दिन आएगा जब हम सब अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता यीशु मसीह से मिलेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि उस पवित्र और भव्य अवसर पर हम उन्हें पहचान सकें, क्योंकि हमें उनका ज्ञान है और क्योंकि हमने उनकी सीख का अनुसरण किया है। वे हमें अपने हाथों और पैरों के निशान दिखाएंगे और हम इकट्ठा शामिल होंगे एक स्थायी प्रेम में, खुशी से रोते हुए, इसलिए कि उसके मार्ग का अनुसरण किया। मैं प्रमाणित करता हूँ इस पृथ्वी के चारों सिरों को कि यीशु मसीह जीवित है। वह हमसे आग्रह करता है, सुनो ओ पृथ्वी के राष्ट्रों और सुनो उसके वचनों को जिस परमेश्वर ने तुम्हें रचा। हम में क्षमता हो सीखने की, ध्यान देने की, समझने की और सही से संदेश को अनुवाद करने की। वह परमेश्वर जिसने रचा ताकि हम उसके मार्ग से ना भटकें। मैं आवेदन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
With you, I join in a warm welcome to these newly sustained brethren of 70, and with a grateful heart express to Elder Collister our love for him. 41 years ago, I climbed into the driver's seat of an
40 वर्ष पहले मैं 18 पहियों वाली एक ट्रक पर अपनी सुंदर पत्नी जेन और हमारा शिशु बेटा स्कॉटी के साथ ड्राइवर की सीट पर चढ़कर बैठा था। हम कई शहरों के लिए मांस बनाने की भारी सामग्री को लादकर ले जाते थे। उन दिनों सीट बेल्ट लगाना या शिशु के लिए सीट का प्रतिबंध नहीं था। मेरी पत्नी ने हमारे अमूल्य बेटे को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी टिप्पणी निश्चय कर लेना चाहिए कि हम जमीन से ऊपर हैं ने मुझे उसकी आशंका की अनुभूति का प्रमाण कर एक एहसास कराया था। जैसे ही हम ऐतिहासिक डोनर पास से निकले, हाईवे के एक तीखे मोड़ पर एक अर्थ वाहन अचानक से भारी धुएं से भर गया था। देखने में कठिनाई हो रही थी, हम मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। भारी तिगड़म के साथ अकेले रफ्तार को कम करना ब्रेक लगाने से काफी नहीं था। इंजन ब्रेक और गियर लगाने का प्रयोग करके मैंने उग्रता से रोकने का प्रयास किया था। जैसे ही मैं रास्ते में एक तरफ खींचकर रुकने लगा, परंतु हमारी पूरी तरह से रुकने से पहले ही मेरी पत्नी ने शिशु को हाथ लेकर वाहन का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई। मैं असहाय होकर उसे गंदे से गिरता हुआ देख रहा था। जैसे ही वह अर्थ वाहन को रोका, मैं उस धुआं वाले वाहन से बाहर आया। एड्रेनलिन के थर्रे के साथ मैं चट्टानों और घास पात में से होते हुए अपनी बाहों में उसको पकड़ लिया था। जैन के हाथ पैर कोहनी में खुराची और खून बहने लगा था, परंतु धन्यवाद करता हूँ कि हमारा बेटा दोनों सांस ले रहे थे। मैंने उसे जैसे ही करीब से पकड़ा, वैसे ही हाईवे का रास्ता थम गया था। जैसे ही मेरी धड़कन सामान्य हुई और मैंने सांस ली, मैं बिना सोचे समझे बोलने लगा, क्या सोचती हो कि संसार में तुम जी रही हो? तुम्हें पता है कितना खतरनाक था ये? तुम मर भी सकती थी। तपते हुए गालों से गिरते हुए आंसू के साथ उसने मुझे मुड़कर देखा और कुछ ऐसा कहा जिससे मेरा हृदय छिद गया था और मेरे कानों में आज भी वे बात गूंजती है। मैं तो सिर्फ हमारे बच्चों की बचाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसी क्षण में जाना कि उसे लगा इंजन में आग लग गई थी। भयभीत होते हुए कि ट्रक फट जाएगा और हम मर जाएंगे, मैं तथापि जानता था कि बिजली की खराबी थी। जोखिमी भरा प्राण घातक नहीं था। मैंने करुणा भय स्पर्श के हमारे बेटे के सिर को सहलाते हुए अपनी बेशकीमती पत्नी की ओर देखा और अचरज करते हुए कि किस तरह की औरत है जो सर्वथा अकारण ही इतना साहस कर सकती है। ये परिस्थिति भावनाओं से जोखिम भरी हो सकती थी, जैसे हमारे इंजन का सच में खराब होना था। कृतज्ञ से समय भर के कारणवश अंथी खामोशी की उपचार के बाद हम में से प्रत्येक ने विश्वास किया ये दूसरे व्यक्ति को दोष था। आखिरकार हमने भावनाओं को व्यक्त किया था जिसमें हमारे गुस्से को छुपा लिया था। दूसरे ही सुरक्षा के लिए प्रेम भरे एहसास को बांटने और प्राण घातक जोखिम भरी घटनाओं के भय से हमारे विवाह का पोषण हुआ। पौलुस ने चेतावनी दी थी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो, उसके शब्द उसी शुद्धता के साथ गूंजे। कोई गंदगी, इस कहावत का आपके लिए क्या तात्पर्य है? हम सभी अपने स्वयं और दूसरे के गुस्से की उच्चतमता को रोजमर्रा महसूस करते हैं। हम सार्वजनिक स्थानों में क्रोध का बिना जांच पड़ताल के भड़कता हुआ देखते हैं। हम इस तरह की भावनाओं को खेल की घटनाओं में कम क्षमता रखने के राजनीतिक क्षेत्रों में और यहाँ तक कि सारे हमारे सब घरों में विभिन्न तरह के अनुभव हैं। कभी कभी बच्चे अपने प्रिय अभिभावकों से तेज तीव्र जबान के साथ बोलते हैं। दंपति जिन्होंने जीवन के कुछ बहुत अच्छे और अग्रतम कोमल अनुभवों को बांटा हो एक दूसरे के साथ क्षमता और धैर्य खो देते हैं और अपनी आवाज को ऊंची करते हैं। हम में से प्रत्येक प्रिय स्वर्गीय पिता के अनुबंधित बच्चे होने के बावजूद स्वयं योग्यता के न्यायिक उस स्थान के पछतावे से गिर जाते हैं और हम बिना दूसरे की परिस्थितियों की दृष्टिकोण को समझने से पहले ही अनुचित शब्दों के साथ बोलते हैं। हम सभी के पास सीखने के मौके होते हैं कि कैसे विनाशकारी शब्द जोखिमता से प्राण घातक परिस्थिति की ओर ले जा सकते हैं। हाल ही के प्रथम अध्यक्षता के एक पत्र में साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह का सुसमाचार हमें प्रेम करना और सभी लोगों के साथ करुणा और सभ्यता से पेश आना है, फिर भी जब हम उससे सहमत ना हो, क्योंकि ही उपरांत स्मरण पत्र है कि हमें लगातार नागरिक संवाद में भाग ले सकें और लेना चाहिए, विशेषकर जब हम संसार को भिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। नीति वचन में सोलोमन ने कहा था, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है परंतु कूट वचन से क्रोध भड़क उठता है। एक कोमल उत्तर एक स्वयं जवाब से दयालु हृदय से निकले अनुशासित शब्द बना था। इसका यह मतलब नहीं है कि हम सीधे ही कभी भी बात नहीं कर सकते। हम सच्चे नियम से समझौता करते हैं, जानकारी के शब्दों से दृढ़ हो सके, आत्मा में कोमल हो सकते हैं। मॉर्मन की पुस्तक एक विवाहती फर्क की असाधारण भाषा के उदाहरण की सूची भी दी गई है। सारा और लेही के पुत्रों को यरूशलेम से पीतल की पट्टियों को वापस लाने के लिए भेजना और वापस न लौट कर आना। सारा को विश्वास था कि उसके बेटे घातक रास्ते में थे। वे गुस्से से भर गए, उसी दोषी ठहरने लगे। उसके पुत्र ने फिर कहानी सुनी क्योंकि वह सोचती थी कि हम वन में मारे गए थे होंगे और मेरे पिता के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहती थी कि वह सपने देखने वाला व्यक्ति है। वह बोली, देखो तुमने हमें अपने पूर्वजों के देश में ले आए, हमारे संतान भी अब तक नहीं रहे, इस तरह जंगल में नष्ट हो रहे हैं। अभी विचार करें कि सारा क्या सोच सकती थी। वह उसकी विवादी बेटे के उस स्थानों पर जहां पर उसके पति के जीवन देने की धमकी दी गई थी कि लौटकर जाने से चिंतन से भरी हुई थी और उसके प्यारे घर का और अकेली वीरान भूमि में मित्रों के लिए एक तंबू का व्यवस्था किया जबकि वह अभी भी जननी की अवस्था में थी। अपने भाई की अति सीमा में ऐसा लगता था कि सारा बहादुरी के साथ तैनात खड़ी थी लेकिन असीम क्षतिग्रस्त ट्रक से अपने परिवार की रक्षा करने का प्रयत्न करना ये बुद्धिमानी नहीं थी। उसने अपने पति को क्रोध और शंका और दोष की भाषा में अपनी वैध चिंता को व्यक्त किया था, एक भाषा जिससे सारे मानव जाति में भाग दौड़ आश्चर्यजनक प्रवीकरण को दर्शाती है। भविष्यता लेही ने भाई को सुना था जो कि उसकी पत्नी के क्रोध का सहारा दे रहा था। जब उसने शांतिपूर्वक दया की भाषा से जवाब दिया था, पहला उसने सच्चाई को अपना कर उसकी दृष्टिकोण से देखा था कि कैसा लगता है और मेरे पिता ने मेरी माँ से इस प्रकार कहा, मैं जानता हूँ कि मैं सब समदर्शी हूँ क्योंकि और मैं यरूशलेम में ही रहता और अपने भाइयों के साथ नष्ट हो जाता। तब उसके पति ने उसके पुत्रों के कल्याण के विषय में सोचकर संबोधित किया था जैसे पवित्र आत्मा ने बिना शंका के उसे गवाही दी थी। देख लेकिन देखा मेरे सुख में प्रतिज्ञा द्वारा किए देश प्रताप किया जिससे मैं आनंद करता हूँ। हाँ मैं उसके जानता हूँ लबान के हाथों से प्रभु मेरे पुत्रों को रक्षा करेगा। आजकल ये आदमी और औरत एक दूसरे के प्रति दूर दराज तक भरोसा आदर और कार्यसूची के संघर्षों को पोषण करने का अधिकार अधिक आवश्यकता है। ये संभव है कि जो कुछ हमारे दिमाग और हृदयों को सूचना देता है कुछ जानने की प्रोशनी सूची करें और सुनाओ जिसे हम चलते और पुत्र समझते हैं। तथापि क्या हुआ गंदी बात क्या हुआ गंदी बात का जिसके बारे में पॉलुस ने कहा था, यदि हमारा पद दूसरे के अनुभवों के लिए समझ है पूरी तरह से मेरी अपनी कमियों की सीमाओं और तीखे कोर को अपनाया, मैं आपसे कोमलता से दूर कर आप क्या सोचते हैं को पूछने का अनुरोध करता हूँ।
What are you thinking? When our truck cab filled with smoke,
जब हमारी टैक्सी धुएं से भर गई थी, मेरी पत्नी ने बहादुरी से काम किया और उसने हमारे पुत्र की रक्षा की करने की कल्पना की थी। मैं भी एक रक्षक की तरह काम करता जब मैं उसके चुनाव पर प्रश्न करता। सदमे में कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा सही था। एक दूसरे को सुनने और दूसरे के दृष्टिकोण समझने फर्क पड़ता है। इच्छा अनुसार एक दूसरे की आंखों में देखकर गलत बात भी सेवा करने की महिमा में बदल जाती है। प्रेरित पौलुस ने इससे समझाया था कि किसी हद तक हम भी इसका अनुभव कर सकते हैं। ये शायद बदल नहीं या समस्या का समाधान ना हो, लेकिन अति महत्वपूर्ण संभवता हो सकती है कि सेवा करने की महिमा बदलाव ला सके। मैं गवाही देता हूँ कि हम सेवा की महिमा धीमी शांत आवाज की उपहार के द्वारा कर सकें। पवित्र आत्मा का पोषण करने से हमारे हृदय दूसरों की भावनाओं और परिस्थिति पर विचारने से छिते जा सकते हैं। पवित्र स्थानों में घातक परिस्थितियों को बदलने में सहमत होते हैं। मैं उद्धार की साक्षी देता हूँ।
I testify of a loving Savior.
मैं उदारकर्ता की साक्षी देता हूँ जो हमारे हृदय को देखता है और ध्यान रखता है। हम क्या सोच रहे हैं? यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
We are deeply grateful.
हम उन सभी को उन सभी का जिन्होंने इस दोपहर में हमसे वार्ता की है और मोहक संगीत जिसे इंस्टीट्यूट गायक मंडली ओरम यूटा द्वारा पेश किया गया है, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम जनरल पौरोहित्य सभा के भाइयों को याद दिलाना चाहते हैं जो कि इस संध्या के आरंभ में शाम 6 माउंटेन डिलाइट टाइम्स में होगी। राष्ट्रभर की मॉर्मन गायक मंडली का प्रसारण कल सुबह 9:30 से 10 बजे तक माउंटेन डेलाइट टाइम से होगा। तुरंत बाद रविवार जनरल सम्मेलन अधिवेशन का आरंभ होगा। अब हम विनम्रता से एल्डर क्विंटल एल कुक 12 प्रेरितों के परिषद से को सुनेंगे जो हमारा अंतिम वार्ताकार होंगे। उनके टिप्पणी के पश्चात गायक मंडली इस सभा का समापन हाई ऑन द माउंटेन टॉप गीत गाने के द्वारा करेगी। फिर समापन प्रार्थना बहन लिंडा के बर्टन सहायता संस्था की जनरल अध्यक्षता में अध्यक्ष द्वारा दी जाएगी। एल्डर कुक। वर्तमान समय में परिवार इतिहास और मंदिर कार्य में शीघ्रता करना परिवारों के उद्धार और उत्कर्ष के लिए जरूरी है। 1981 में अपनी मृत्यु से ठीक पहले विवादग्रस्त लेखक विलियम सरोयान ने प्रेस को बताया था, हर किसी को मरना है लेकिन मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि मैं नहीं मरूंगा। अब क्या होगा? इस जीवन में मृत्यु का सामना करते हुए इसके बाद क्या होगा और मृत्यु के बाद जीवन का मनन करते हुए इसके बाद क्या होगा? आत्मा के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनका उत्तर यीशु मसीह के पुनर्स्थापित सुसमाचार पिता की सुख की योजना में बहुत सुंदरता से देता है। इस जीवन में हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम काम करते हैं, हम खेलते हैं, हम जीते हैं और फिर हम मर जाते हैं। अय्यूब ने छोटे से प्रश्न पूछा था, यदि मनुष्य मरता है क्या वे फिर जीवित होगा? उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान के कारण उत्तर निश्चित रूप हाँ है। इस प्रश्न के लिए अय्यूब की व्याख्या का कुछ हिस्सा दिलचस्प है। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का है, वह फूल की नई खिलता है, और फिर तोड़ा जाता है। वृक्ष की जो आशा रहती है कि चाहे वह काटा डाला भी जाए तो भी फिर पनपेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेंगी। हमारे पिता की योजना परिवारों के विषय में है। हमारे बहुत से धर्मशास्त्र परिवार की तुलना एक वृक्ष के साथ इसके जड़ों और शाखाओं से करते हैं। पुराने नियम में अपने अंतिम अध्याय में उद्धारकर्ता के द्वितीय आगमन की व्याख्या करते हुए मलाकी इस तुलना का उपयोग करता है घमंड और दुष्ट के विषय में बोलते हुए वह टिप्पणी करता है कि वे आग में ठुंठ जलाए जाएंगे और कि वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। मलाकी इस अध्याय के प्रभु को प्रभु दिलासा भरी प्रतिज्ञा के साथ समाप्त करता है। देखो यहोवा ने उसे उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वे माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यनाश करूं। पुनर्स्थापना के आरंभ में 1823 में मोरोनी ने युवा जोसेफ स्मिथ को अपने आरंभिक निर्देश में इस संदेश पर जोर दिया था। संसार भर में ईसाई और यहूदी पुराने नियम के एलिय्याह के इस वर्णन को स्वीकार करते हैं। यीशु मसीह के समय में पहले वह मेलकिजेदेक पौरोहित्य की मोहरबंदी की शक्ति को धारण करने वाला अंतिम भविष्यवक्ता था। अप्रैल 1836 को एलिय्याह की वापसी कर्टलैंड मंदिर में हुई थी। उसने घोषणा की थी कि एक मलाकी की प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा था। उसने परिवारों को मोहरबंद करने के लिए पौरोहित्य कुंजियों को हमारे समय में दिया था। एलिय्याह ने के उद्देश्य को उससे मदद मिली थी जिसे कभी कभी एलिय्याह की आत्मा कहा जाता है, जो कि जैसा एल्डर रसल एम नेल्सन ने सिखाया था, परिवार का दिव्य प्रकृति और पवित्र आत्मा की गवाही का प्रमाण है। उद्धारकर्ता ने बपतिस्मे की आवश्यकता पर जोर दिया था। उसने सिखाया था जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्मे ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। उद्धारकर्ता ने स्वयं बपतिस्मा लेकर इसका उदाहरण रखा था। लेकिन उन मृतकों का क्या होगा जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ? 11 अक्टूबर 1940 को नावू में वायलेट किम्बल ने अपने पति एल्डर हीबर सी किम्बल को पत्र लिखा था, जो अन्य 12 के साथ ग्रेट ब्रिटेन में मिशन पर सेवा कर रहे थे। अक्टूबर महासम्मेलन कुछ दिनों पहले समापन हुआ था। मैं वायलेट किम्बल के निजी पत्र से पढ़ता हूँ। हमारे लिए गिरजे के संगठित होने के उपरांत सबसे बड़ा और अत्यधिक आकर्षक महासम्मेलन था। अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ ने एक नए और शानदार विषय में शुरुआत की थी। एक विषय था मृतकों का बपतिस्मा। इसके विषय में पौलुस ने प्रथम कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 29वीं आयत में बोला है। जोसेफ को इसके विषय में प्रकटीकरण द्वारा पूरी व्याख्या दी गई थी। उन्होंने कहा था कि वे गिरजे के सदस्यों के लिए अपने उन रिश्तेदारों के लिए बपतिस्मा लेने का सौभाग्य होगा जो इस सुसमाचार के आने से पहले मर गए थे। उनके लिए बपतिस्मा लेकर हम उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और अपने और उन्हें प्रथम पुनरुत्थान में जी उठने का सौभाग्य देते हैं। उन्होंने कहा था मृतकों को आत्मिक जेल में सुसमाचार सिखाया जाएगा। वायलेट ने आगे लिखा, मैं अपनी माँ के लिए बपतिस्मा लेना चाहती हूँ। क्या यह एक खूबसूरत सिद्धांत नहीं है? परिवारों को एक करने का यह जरूरी सिद्धांत नियम पर नियम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां करके प्रकट किया गया था। प्रतिनिधि विधियां अनंत परिवारों को एक साथ जोड़ने, शाखाओं को जड़ों से जोड़ने के लिए आवश्यक नियम है। परिवार इतिहास और मंदिर कार्य के संबंध में परिवार और सिद्धांत स्पष्ट है। प्रभु ने अपने आरंभिक प्रकटीकरण में आपके मृतकों का संदर्भ किया था। हमारे अपने पूर्वजों के प्रति हमारा सिद्धांतिक दायित्व है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का सेलेस्टियल राज्य परिवारों पर आधारित है। प्रथम अध्यक्षता ने सदस्यों को, विशेषकर युवाओं और अविवाहित वयस्कों को, परिवार इतिहास कार्य और अपने स्वयं के परिवार के नामों या अपने वार्ड के स्टे के सदस्यों के पूर्वजों की विधियों पर जोर देने के लिए उत्साहित किया है। हमें अपने जड़ों और शाखाओं दोनों से जुड़ने की आवश्यकता है। अनंत राज्य के साथ एक साथ रहने का विचार वास्तव में शानदार है। विल्फर्ड वुड्रफ ने दर्शाया था कि जोसेफ स्मिथ मंदिर कार्य को स्थापित करने के लिए काफी लंबे समय तक जिए थे। जोसेफ स्मिथ 12 के परिषद के से अंतिम बार उन्हें उनका एंडोवमेंट देने के लिए मिले थे। भविष्यवक्ता के शहीद होने के बाद संतो ने नावू मंदिर का निर्माण पूरा किया था और राखी पर्वत पर जाने से पहले हजारों सदस्यों को आशीषित करने के लिए मोहरबंद की शक्ति का उपयोग किया गया था। 30 साल के बाद सेंट जॉर्ज मंदिर का निर्माण पूरा होने के पर अध्यक्ष ब्रिगम यंग ने समझाया था कि अनंत महत्व की बचाई जाने वाली विधियां अंततः जीवित और मृतक दोनों के लिए उपलब्ध थीं। अध्यक्ष विल्फर वुड्रफ ने सरलता से बताया था, प्रभु ने किसी अन्य नियम ने शायद ही मुझे इतना आनंद मिला दिया होगा जितना हमारे मृतक की मृत्यु ने दिया है कि हम प्रथम पुनरुत्थान की सुबह को और सेलेस्टियल राज्य में अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ होंगे। इस समय पृथ्वी पर होने का ये महान समय है, ये अंतिम प्रबंध है और हम हर काम में उद्धार के कार्य में शीघ्रता को महसूस कर सकते हैं जहां कई बचाने वाली विधियां शामिल हैं। इन बचाई जाने वाली विधियों पर उपलब्ध कराने के लिए अब हमारे पास संसार में लगभग हर स्थान पर मंदिर हैं। आत्मिक नवीनकरण, शांति, सुरक्षा और अपने जीवन में निर्देश पाने के लिए मंदिर जाना एक महान आशीष भी है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने प्रेरित नियुक्त किए जाने से 1 साल से भी कम समय में लॉस एंजलिस मंदिर वंशावली पुस्तकालय को समर्पित किया था। उन्होंने मृत पूर्वजों के विषय में बोला था कि वे उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब आप और मैं इस खोज को करेंगे जो कि मार्ग से बाधा दूर करने के लिए जरूरी है, और इस प्रकार मंदिर जाएंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे जिसे वे स्वयं पूरा नहीं कर सकते। 20 जून 1964 को जब उस समय में एल्डर मॉन्सन ने इस समर्पण टिप्पणी को दिया था, तब केवल 12 मंदिर ही कार्य कर रहे थे। अध्यक्ष मॉन्सन की गिरजे की उच्च परिषद की सेवा के दौरान कार्य कर रहे थे 142 मंदिरों में से 130 को आरंभिक रूप से समर्पित किया जा चुका था। हमारे समय में उद्धार के कार्य की शीघ्रता को देखना यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। 28 और मंदिरों की घोषणा की गई और पूरा होने के चरण में है। परिवार इतिहास तकनीकी ने भी नाटकीय रूप से तरक्की की है। अध्यक्ष हॉवर्ड डब्ल्यू हंटर ने मार्च 1995 को घोषणा की थी, मृतकों के लिए विधियों को उपलब्ध कराने के पवित्र कार्य की शीघ्रता के लिए हमने सूचना तकनीकी का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। तकनीकी की भूमिका को स्वयं प्रभु ने गति दी है। हालांकि जो कुछ हम तकनीकी से कर सकते हैं उसकी अभी हमने केवल शुरुआत मात्र ही की है। इस भविष्यवक्ता कथन के 19 वर्षों के दौरान तकनीक को तेजी लगभग अविश्वसनीय रही है। युवा बच्चों की 36 वर्षीय माँ ने हाल में आश्चर्य करते हुए मुझे बताया था, जरा विचार करें, परिवार इतिहास केंद्र में माइक्रोफिल्म का अध्ययन करने के स्थान पर आप बच्चों को के सो जाने के पश्चात मैं अपनी किचन की मेज पर कंप्यूटर पर परिवार इतिहास का कार्य करती हूँ। मंदिर और परिवार इतिहास कार्य केवल हमारे लिए नहीं है, उनका विचार करें, इस संसार की दूसरी ओर चले गए हैं और बचाए जाने वाली विधियां की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उन्हें आत्मिक जेल के बंधन से मुक्त करेंगी। जेल का अर्थ एकांतवास या कैद का की अवस्था है। जो कैद में है, हो सकता है विलियम सरोयान के प्रश्न पूछ रहे हैं, अब क्या होगा। सॉल्ट लेक मंदिर में एक विश्वासी बहन ने विशेष आत्मिक अनुभव बांटा था। प्रतिनिधिक पुष्टिकरण विधि होने के बाद जब वह पुष्टिकरण कक्ष में ही थी, उसने सुना और कैदी मुक्त किए जाएंगे। उसने उनके लिए बहुत जरूरी समझा जो अपने बपतिस्म और पुष्टिकरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। घर वापस लौटने पर अपने धर्मशास्त्रों में उस वाक्य खोज को जिसे उसने सुना था, उसे सिद्धांत और अनुबंध के 128 खंड में जोसेफ स्मिथ की घोषणा मिली, भविष्यवक्ता जोसेफ हमें आनंद मनाने और खुशी होने की प्रेरणा देते हैं। पृथ्वी गा उठेगी, मृतक हमारे राजा इमैनुअल, जिसे संसार की सृष्टि के पूर्व नियुक्त किया गया था, और प्रशंसा में गा उठेंगे। प्रश्न यह है कि हमें क्या करना चाहिए। भविष्यवक्ता जोसेफ ने प्रभु के पवित्र मंदिर में हमारे मृतकों का विवरण प्रस्तुत करने की सलाह दी थी जो कि स्वीकार योग्य होंगे। गिरजे के मार्गदर्शक ने अपने पूर्वजों की खोज करने के और उनके लिए मंदिर की विधियां संपन्न करके इलाया की आत्मा के अनुभव करने के लिए तकनीकी का उपयोग करने के लिए उभरती पीढ़ी को स्पष्ट निर्देश दिया है। यदि प्रत्येक वार्ड में युवा न केवल मंदिर जाते और अपने मृतकों के लिए बपतिस्मा करते बल्कि अपने परिवारों को और वार्ड में अन्य सदस्यों के परिवार के नामों को विधियां संपन्न कराने के लिए देते हों, वे और गिरजे दोनों आशीषित होंगे। अपने प्रयासों और जिनकी आप सेवा करते हैं उनसे अंततः मिलने में मृतकों की सहायता को कम ना समझें। अपने स्वयं के परिवार को एकत्रित करने की आशीष के महत्व की कल्पना समझ से परे है। गिरजे के विश्व ही सदस्यता में 51% वयस्क लोगों के माता पिता दोनों गिरजे की फैमिली सर्च इंटरनेट साइट में उनके परिवार वृक्ष में नहीं है। 65% वयस्क लोग सभी दादा दादी नाना नानी सूचीबद्ध नहीं है। याद रखें, हम बिना अपने जड़ों और शाखाओं के नहीं बचाए जा सकते। गिरजे के सदस्य को इस आवश्यक सूचना को पाना और देना चाहिए। हमारे पास अंततः परिवारों के लिए उद्धार का ये शानदार कार्य पूरा करने के लिए सिद्धांत मंदिर और तकनीकी उपलब्ध है। मैं एक तरीके का सुझाव दे सकता हूँ जिससे इसे किया जा सकता है। परिवार एक परिवार वृक्ष सभा का आयोजन कर सकता है। ये एक बार बार की जाने वाली गतिविधि होनी चाहिए। इसमें प्रत्येक वर्तमान परिवार इतिहास कथा और फोटो लाएगा जिसमें दादा दादी नाना नानी और माता पिता की प्रिय वस्तुएं होंगी। हमारे युवा लोग अपने परिवार के सदस्यों के जीवन के बारे में सीखने के लिए उत्साहित हैं। वे कहां से आए और उन्होंने जीवन कैसे बिताया। बहुतों के मन उनके माता पिता की ओर फिर चुके हैं और उनकी कथाओं और फोटो को चाहते हैं और उनके पास इन फोटोओं और कथाओं को स्कैन और फैमिली ट्री में अपलोड करने और स्रोत दस्तावेज को पूर्वजों के साथ जोड़कर हमेशा के लिए सुरक्षित करने की तकनीकी योग्यता है। अवश्य ही मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कौन सी विधियां अभी भी पूरी की जाने हैं और जरूरी मंदिर कार्य के लिए निर्देश दिए जाएं। परिवार सूचना कथाएं और फोटो रखने के लिए माय फैमिली पुस्तिका का उपयोग किया जा सकता है जो कि फैमिली ट्री में अपलोड की जा सकती है। अपनी दिव्य नियति को बचाने के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं हमारी मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके लिए जो सबद के दिन को संपूर्ण परिवार के रूप में अधिक लाभदायक बनाना चाहते हैं, परिवार इतिहास कार्य की शीघ्रता एक उपयोगी गतिविधि है। एक माँ बहुत खुश होकर बताती है कि कैसे उसका 17 साल का बेटा गिरजे के बाद रविवार को कंप्यूटर पर परिवार इतिहास के कार्य को करता है और कैसे 10 साल का बेटा अपने पूर्वजों की कथाएं सुनना और फोटो देखना पसंद करता है। इससे उनका संपूर्ण परिवार इलाया की आत्मा को महसूस करने के लिए आशीषित हुआ है। हमारी अनमोल जड़ों और शाखाओं को पोषण किया जाना चाहिए। यीशु मसीह ने प्रतिनिधिक प्रायश्चित के लिए अपना जीवन दे दिया था। उसके अय्यूब के प्रश्न का समाधान किया था। उसने संपूर्ण मानव जाति के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी जो कि हम स्वयं नहीं कर पाते। हम हालांकि प्रतिनिधिक विधियों को कर सकते हैं और वास्तव में अपने स्वयं के परिवारों के लिए सियोन पर्वत पर उद्धारक बन सकते हैं। मैं उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान और हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए पिता की योजना की निश्चितता से गवाही देता हूं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Now look up in Dear and beloved Father in heaven, we rejoice.
ईश्वर के पिता हम खुश हैं कि हम हमें आशीष दी गई है कि हम सब इकट्ठा हो सके एक महान परिवार के तौर पे और अपने मार्गदर्शक भविष्यवक्ता के और उसके उनके रेवलेटर्स के और प्रार्थना करते हैं कि आज जैसे कि हमने अपने हाथ ऊपर करके उनको सस्टेन किया है और हम वो सब करें जो जिसके लिए हमें बोला गया है. हम धन्यवाद करते हैं आपके पुत्र के लिए और उसके बलिदान के लिए और हम वादा करते हैं कि हम उसके प्रति अपना प्रेम दिखाएंगे जिसने हमारे लिए एक योजना बनाई. हम एक बार धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया. यीशु मसीह के नाम में आमीन.
This has been a broadcast of the 184th annual
General के संतों का यीशु मसीह का गिरजाघर का 184th वार्षिक जनरल सम्मेलन का प्रसारण था. वार्ताकारों को जनरल अधिकारियों और गिरजे के जनरल कार्यालयों से चुना गया था. संगीति गायन मंडी और ओरम यूटा संस्थान द्वारा मिलकर दिया गया था.
This broadcast has been furnished as a public service.
बॉर्नवेल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इस प्रसारण का प्रबंध जनसेवा के लिए किया गया था. कोई भी पुनरुत्पादन करना, रिकॉर्डिंग, प्रतिलिपि बनाना या इस कार्यक्रम का दूसरा प्रयोग करना बिना किसी लिखित सहमति के वर्जित है.